अच्छा, उसके बाद जो है वो व्हेन वी हैव क्लियरली एक्सक्लूडेड द रिएक्शन, तो उसके बाद फिर रिलैप्स में हमने कुछ इन्वेस्टिगेशंस करनी होती हैं, जिसमें दो मेन इन्वेस्टिगेशंस वो यही है कि स्किन बायोप्सी और स्लिट स्किन स्मेयर्स। तो स्लिट स्किन स्मेयर हम पहले करते हैं, और जब हमारे पास वो पॉजिटिव आते हैं ना, फिर उसको सेकेंड रीडिंग पर हम दोबारा रिपीट करके अपने जो डायग्नोसिस है वो कन्फर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो रिलैप्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो बैक्टीरियोलॉजिकल इंडेक्स है वो जो पहले वाला उसका बैक्टीरियोलॉजिकल इंडेक्स था, इट इज़ 2+ और मोर देन 2+ हायर देन द लास्ट वन। ठीक है, तो अगर जो है वो प्रीवियसली पेशेंट जो है वो स्मेयर नेगेटिव था और अभी वो स्मेयर पॉजिटिव हो गया है, तब भी हम उसको रिलैप्स कंसिडर करेंगे। अगर वो पहले स्मेयर पॉजिटिव था और अब वो अभी पॉजिटिव है, कितना पॉजिटिव होना चाहिए? मोर देन 2+ हायर, तो तब फिर हम उसको रिलैप्स कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जो है ना वो स्मेयर पॉजिटिव के अंदर हमने इसको लाजमी इसी तरह मैंशन करनी है, ताकि हम उस लेवल को पेशेंट को लेबल कर सकें एज ए केस ऑफ रिलैप्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि द स्मेयर शुड बी रिपीटेड ट्वाइस फॉर द कंफर्मेशन। इफ़ द पेशेंट वाज ओरिजिनली स्मेयर पॉजिटिव एंड हैज़ नो रिकॉर्ड ऑफ बिकमिंग नेगेटिव, हैज़ स्मेयर रिजल्ट डेफिनेट हायर देन द मोस्ट रीसेंट वन अवेलेबल, एटलीस्ट 2+ हायर देन द लास्ट वन, तो लाइकली टू बी अ रिलैप्स केस। ठीक है, तो उसके अलावा अगर हमारे पास जो है वो बायोस्मेयर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं या रिलायबल नहीं है, तो उसमें हम बायोप्सी कर सकते हैं। तो उसकी बायोप्सी पे हमने क्या देखना है, एक तो ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन देखना है, और दूसरा हमने देखना है टाइप ऑफ सेल कौन सा है। तो अगर उसके अंदर न्यूली इन्फ्लक्स्ड इमेच्योर मैक्रोफेजेस कंटेनिंग एसिड फास्ट बैसिलाए हैं रादर देन द फोमी सेल्स, तो इसका मतलब है कि रिलैप्स है, क्योंकि हमें पता है जब एक्टिव इन्फेक्शन होता है उसके अंदर मैक्रोफेजेस कंटेनिंग एसिड फास्ट बैसिलाए होते हैं, और जब वो हील होता है तो उसमें फोमी जो सेल्स होते हैं वो उसको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि अगर हमारे पास न्यू स्मेयर्स आर नेगेटिव या नॉट हायर देन द मोस्ट रीसेंट वन, तो फिर हम क्या करेंगे कि वी विल रिलाई ऑन द क्लिनिकल साइंस एंड वी विल डू द बायोप्सी। तो जिस भी पैथोलॉजिस्ट को हम सेंड करते हैं बायोप्सी, उसको हमने मैक्सिमम क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन देनी है और उसको ये बताना है कि व्हाट डू वी वांट फ्रॉम द रिजल्ट्स। तो उसमें उसने ये खास तौर पे देखना है कि कोई साइंस ऑफ रिएक्शन या साइंस ऑफ रिलैप्स इन द फॉर्म ऑफ वेल ऑर्गेनाइज ग्रैनुलोमास है या नहीं है। उस एडिशनली इसके साथ जो है ना हमने स्पेसिफिक या सुटेबल स्टेन्स यूज़ करने हैं टू सर्च फॉर अ स्मॉल नंबर ऑफ एसिड फास्ट बैसिलाई इन द टिश्यूज़, क्योंकि अगर जो बैक्टीरियोलॉजिकल इंडेक्स है वो बहुत लो है ना, तो स्मेयर में डिटेक्ट नहीं होगा, तो फिर हिस्टोपैथोलॉजी में स्पेशल स्टेन्स के साथ फिर हम उसको देख सकते हैं। हिस्टोलॉजी रिपोर्ट एज वेल एज द अदर इंफॉर्मेशन अगर स्टिल दे आर इन डाउट, तो फिर हम पेशेंट को दोबारा फॉलोअप के लिए बुलाएंगे और दोबारा से रिव्यू करेंगे। ठीक है, अगर पेशेंट पॉसी बैसिलरी है और वो रिलैप्स होके अभी मल्टी बैसिलरी में भी आ गया ना, तो फिर वी स्टिल वी हैव टाइम ताकि हम उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करें। देर इज़ नो डेंजर ऑफ हिम इन्फेक्टिंग दी अदर्स इफ़ कीमोथेरेपी इज़ डिलेड फॉर अ फ्यू वीक्स। ठीक है, वंस द डायग्नोसिस ऑफ द रिलैप्स हैज़ बीन कन्फर्म्ड, इट इज़ एसेंशियल टू एडवाइज द पेशेंट टू हैव हिज हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट एग्जामिन फॉर द लेप्रेसी एज वेल, ये याद रखना है हमने। उसके बाद जो है ना वो हमारे पास यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है और उसके ऊपर लिखा है लिंडर्स प्रपोज डायग्नोस्टिक स्कोरिंग सिस्टम फॉर द मल्टीबैसिलरी रिलैप्स इन द लेप्रोसी। इसके अंदर हमारे पास हर चीज़ के जो है ना अलग अलग स्कोर्स दिया हुआ है और उसको टोटल करके हमने देखना है कि क्या वो वाकई में मल्टीबैसिलरी रिलैप्स है या नहीं। इसके अंदर तीन पैरामीटर्स हैं, एक है टाइम फैक्टर, दूसरा रिस्क फैक्टर और थर्ड क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एट द रिलैप्स। फिर जो टाइम फैक्टर है उसको हमने किस तरह बताना है कि कितने मंथ्स के बाद पेशेंट दोबारा सिम्टम्स के साथ हमारे पास आया है, तो ये जो है ना डिवाइड किया हुआ है लेस देन 12 मंथ्स, 13 to 24 मंथ्स, 25 to 60 मंथ्स एंड मोर देन 60 मंथ्स। तो ऑब्वियसली जितना टाइम बढ़ता जाएगा ना वो स्कोर बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जांपल इफ़ द पेशेंट हैज़ कम टू अस विद इन 12 मंथ्स, तो उसको हम कभी भी रिलैप्स कंसिडर नहीं करेंगे, तो इसलिए स्कोर विल बी ज़ीरो। इफ़ इट इज़ 13 to 24 मंथ्स वी विल गिव स्कोर 1, 25 to 60 मंथ्स स्कोर 2 एंड मोर देन 60 मंथ्स स्कोर 3। ठीक है, तो मैक्सिमम 3 स्कोर हम इसको दे सकते हैं। रिस्क फैक्टर में ये है कि इफ़ द इनिशियल बैक्टीरियोलॉजिकल इंडेक्स इज़ मोर देन 3+, तो फिर हम इसको स्कोर दे देंगे 1। तो कम अज़ कम 3+ का जो है ना इनिशियल वो हमारे पास होना चाहिए। जब उस पेशेंट ने अपनी ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू की थी तो तब उसका बैक्टीरियोलॉजिकल इंडेक्स क्या था, तो वो कम अज़ कम 3+ तो होगा ही होगा। क्योंकि जब हम ट्रीटमेंट देते हैं ना, इवन इफ़ यू गिव इट फॉर 24 मंथ्स, फिर भी वो पेशेंट जो है जब उसको फ्री ऑफ ट्रीटमेंट करते हैं तो वो टोटली फ्री ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल इंडेक्स नहीं होगा। तो कम अज़ कम जो है ना हमारे पास 3+ होना ही चाहिए, तो वी विल गिव अ स्कोर ऑफ 1। उसके बाद क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस में, बल्कि क्लिनिकल में क्या कहूँगी इसको, बैक्टीरियोलॉजिकल इंडेक्स और साइंस ऑफ रिएक्शन में हमने डिस्क्राइब करना है। तो बैक्टीरियोलॉजिकल इंडेक्स जो है वो सिंगल लेशन में या एवरेज में, यानी बहुत सारे लेशंस अगर हैं तो एवरेज जो है ना वो इसका जो पहले वाला बैक्टीरियोलॉजिकल इंडेक्स है उससे कम अज़ कम +2 हायर होना चाहिए, तब हम इसको स्कोर देंगे 1। या फिर अगर वो पेशेंट पहले स्मियर नेगेटिव था और अब पॉजिटिव हो गया तो तब भी हम उसको स्कोर देंगे 1। एक और इसके अंदर पैरामीटर है जिसको स्कोर हम 1 देते हैं, वो ये है कि अगर साइंस ऑफ रिएक्शन नहीं है तो फिर हम उसको स्कोर दे देंगे 1, क्योंकि क्लियरली हमें पता चल रहा है कि रिएक्शन ही है तो रिलैप्स ही होगा। ठीक है, तो यहाँ भी ये एक टर्म यूज़ हुई है, एक्सपेक्टेड बैक्टीरियोलॉजिकल इंडेक्स। उसका मतलब क्या होता है कि अगर हमें एग्जैक्ट नहीं पता ना बैक्टीरियोलॉजिकल इंडेक्स, तो जो भी कैलकुलेटेड बैक्टीरियोलॉजिकल इंडेक्स है उसको हम ये अज्यूम करते हैं कि जितना टाइम गुजरता जाएगा इन टर्म्स ऑफ ईयर उसका बैक्टीरियोलॉजिकल इंडेक्स 1 log unit कम होता जाएगा। ठीक है, तो उसको एक्सपेक्टेड को हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा रिलैप्सेस आर डायग्नोस्ड विद अ स्कोर ऑफ मोर देन 3। ये जो हमने स्कोरिंग सिस्टम अभी देखा है ना, रिलैप्स हम तब कंसिडर करेंगे जब हम पूरे स्कोर को प्लस कर लेंगे, मैक्सिमम हमारे पास स्कोर 7 आ सकता है। तो द स्कोर शुड बी मोर देन 3, तब हम इसको कंसिडर करेंगे, 3 or more than 3 तो उसको हम कंसिडर करेंगे रिलैप्स। ठीक है, तो ये है लिंडर्स प्रपोज डायग्नोस्टिक स्कोरिंग सिस्टम के बारे में। बाकी कीमोथेरेपी और फिर रिलैप्स केस के अंदर हमने क्या करना होगा कि जो भी पेशेंट रिलैप्स के साथ आता है वो प्रीवियसली ट्रीटमेंट कंप्लीट करके आता है, इस वजह से बैक्टीरिया जो है वो मोस्टली सेंसिटिव होते हैं टू द मल्टी ड्रग थेरेपी। तो इस वजह से ज़्यादातर केसेस में तकरीबन ज़रूरत नहीं ही पड़ती है हमें सेकेंड लाइन ड्रग्स देने की। लेकिन अगर हमें ड्रग रेजिस्टेंस का पता हो या पेशेंट जो है वो रिफेम्पिसिन से या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस से है, तो फिर उसके लिए हम कोई डिफरेंट रिजीम प्लान करेंगे ताकि वो पेशेंट को हम रिलैप्स से ट्रीट कर सकें।